साधना के कितने दिन पूरे हुए? 10। आज तपस्या का 11वां दिन। क्या क्या देखा इन 10 दिनों में? मौन का अभ्यास, योग का अभ्यास, एकांत का अभ्यास और क्या क्या देखा? ड्रिल का अभ्यास और प्रकृति के सानिध्य का अभ्यास और एक्सरसाइज, व्यायाम, शरीर को हिलाना और आहार, क्या हम खा रहे हैं, और फास्टिंग का अभ्यास और कल क्या देखा था? सेल्फ मसाज। और क्या देखा? और ताई ची शिगोंग। और क्या क्या देखा? बहुत सारी चीजें देखी। 10 दिन लंबा समय है, और केवल देखना नहीं है, करना है। योग की अलग अलग विधियां। राजयोग बहुत गहरा है, सजगता का अभ्यास, साक्षी का अभ्यास। उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहला संकल्प, मैं साक्षी हूं। उठते ही अभी पैर जमीन पर रखे नहीं है, बिस्तर पर ही है, वहीं से अभ्यास चालू, मैं अलग हूं। शरीर की सत्ता अलग, मैं अलग, ये सब शरीर के साथ हो रहा है, मैं अलग, मैं इधर हूं, पैर रखे, स्नान कर रहे हैं, क्या सोचेंगे, ऊर्जा, कौन सा स्नान है ये, ऊर्जा का स्नान, ऑरा के विषय में हमने देखा, कैसे बढ़ाएंगे ऑरा को, ऑरा को कैसे बढ़ाएंगे, प्रभा मंडल को कैसे बढ़ाएंगे, वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी घूम रही है इर्द गिर्द, उससे स्वयं को कैसे सुरक्षित रखेंगे, रेजिंग वंस वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाएंगे, उसकी भी ढेर सारी बातें देखी थी। क्या क्या जो नहीं बताइए वो बताना है अभी तक, अभी जो नहीं बताई, स्नान, सी वाटर, और सूर्य को देखना 24 घंटे में एक बार, पसीने से तर बतर हो जाना, और सूर्य को देखना, चंद्रमा को देखना, और वो कल सुनाया था वो सारी प्रकृति से जुड़ी हुई बातें, और ऑरा को कैसे बढ़ाएंगे, प्रकृति से की सारी बातें तो हो गई, और अपने चेतना को देखना, संवेदनाओं को महसूस करना, शरीर में किस तरह की संवेदनाएं हैं, शरीर की भाषा को सुनना, शरीर क्या बोल रहा है, शरीर निरंतर कुछ कह रहा है, उसको पढ़ना, उसको स्कैन करना, श्वास की तरफ देखना, श्वास की गति को देखना साक्षी भाव से, और सेल्फ लव, खुद पर दया करना, बहुत अत्याचार किए खुद पर, बहुत जुल्म किए ढाए इस शरीर पर, और इस शरीर को पवित्र बनाना है, क्योंकि पवित्र शरीर में ही पवित्र संकल्प उत्पन्न होंगे, उसके लिए भोजन की पवित्रता, जितना भोजन पवित्र उतनी भावनाएं पवित्र, जितना भोजन पवित्र वो भोजन ही संकल्प बन रहे हैं, अपने आप संकल्प पवित्र होते जाएंगे। और क्या देखा, कॉर्ड्स, एनर्जेटिक कॉर्ड्स, हमने आत्माओं के साथ अपने कुछ कुछ संबंध जोड़ रखे हैं, और बहुत सारे संबंध अनावश्यक है, अमृत वेले वो जो कॉर्ड्स है उनको कट करते जाना है। और कौन से अभ्यास देखे, अभ्यास डिवाइन एनर्जी मेडिटेशन, ऊपर से प्रकाश का एक कॉलम आ रहा है, पूरे शरीर से बह रहा है और फिर धरती में जा रहा है, ये एक अभ्यास देखा था और किया भी था। और डिटैच हो जाना, अलग अलग जगह पर मन को घुमाना, मधुबन की सैर करना, कितने धाम है मधुबन के, 8 धाम, मधुबन के 8 धामों की मन से यात्रा करना। और क्या देखा था, शक्ति का गोला, क्या जमा करना है, एनर्जी का गोला, अभी अभी सभी जमा करेंगे, सारी संकल्प शक्ति इस गोले के अंदर डाल दो, एक कोई संकल्प ले लो प्यूरिटी, तो प्यूरिटी अपने इस सभी प्यूरिटी का संकल्प लेंगे, इस गोले में प्यूरिटी को भरेंगे, अब ग्लोब को बीच में इमर्ज करेंगे और जोर से इस प्यूरिटी को इस ग्लोब में डालेंगे, सभी साथ में कहेंगे प्यूरिटी, फिर से एक बार प्यूरिटी, फिर से एक बार प्यूरिटी, और इस गोले को अब उठाओ और जाने दो ऊपर, अब एनर्जी शावर पूरे शरीर में, प्यूरिटी की ऊर्जा, तो एनर्जी बॉल निर्माण करना है, स्थान में एनर्जी भरनी है, चार्जिंग, पानी को चार्ज कर देना, भोजन को चार्ज कर देना, स्थान को चार्ज कर देना, अपनी चेयर को स्थान चार्ज कर देना, ये कंप्यूटर को चार्ज कर देना, मोबाइल को चार्ज कर देना, अमृत वेला, प्योरिटी की किरणें, प्योरिटी आ रही है और इस प्योरिटी से इस मोबाइल को चार्ज कर दिया, क्योंकि ये बड़ा विकर्म कराता है। तो और कंघी, नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, ब्रश करो, कंघी करो, जो करना है करो, पर नेगेटिव एनर्जी को निकालना है। सारी साधना है लाइट बॉडी एक्टिवेशन की, सारी साधना है सूक्ष्म शरीर के अनुभूति की, सारी साधना है देहभान से ऊपर उठने की, सारी साधना है बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाकर आत्मा तक पहुंचने की। पर बीच में सूक्ष्म शरीर है, उसका बीच में अनुभव होना चाहिए। एक साधना हम आगे के सत्र में करेंगे, बारदो की साधना। तिब्बत में इस पर बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है जब हम मरते हैं, मरने के बाद 3 दिन तक हमको यकीन ही नहीं होता है कि हम मर चुके हैं। मरने के बाद आत्मा वहीं घूमती रहती है शरीर के इर्द गिर्द, उसको लगता है अरे क्यों रो रहे हो, अरे ये मेरी जगह, ये मेरा ऑफिस, ये मेरा केबिन, ये मेरे कपड़े, क्योंकि इतना लगाव है। आत्मा छोड़ नहीं पाती, उसको यकीन ही नहीं होता है, फेथ ही नहीं होता है कि मैं जा चुकी हूं, ये मेरा स्थूल शरीर नष्ट हो चुका है। वो सूक्ष्म शरीर घूमते रहता है इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द, ये मेरा पेन, ये मेरी डायरी, ये मेरी अलमारी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, अरे मैं हूं, पर उनको तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हम चिल्ला रही है, आत्मा चिल्ला रही, क्योंकि जितनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी उतना तुरंत आत्मा निकल नहीं जाएगी। इसलिए बारदो की साधना में तिब्बत में जब बौद्ध भिक्षु मरने वाला है, उसको तभी से ही ट्रेनिंग, मतलब तभी उसको कहा जाता है उसके माइंड को कि अभी मेरी मृत्यु हो रही है, मेरी सारी आसक्ति, अभी मरा नहीं है व्यक्ति, पहले से ही उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले तो जीवन भर देते ही है, पर जब मरने की स्थिति नजदीक हो तब भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, वो कहते हैं यहीं उसको जाने दो, और वहीं उसको ट्रेनिंग दी जाती है। 2-3 दिन वो बस वो मृत्यु का ही चिंतन करता है, ताकि आत्मा निकल जाए, ताकि पुनः दूसरे गर्भ में जब स्थापित हो जाए तो यहां का सब हट जाए। बार दो उसकी भी साधना आगे हम करेंगे, मरने का अभ्यास, ताकि आसक्तियां हट जाए। मर्जी वा जन्म है, जीते जी मरने का अभ्यास सबसे गहरा प्रयोग है, मृत्यु पर प्रयोग। और क्या देखा हमने 10 दिनों में? बहुत कुछ देखा। और क्या देखा? योगिक क्रियाएं देखी। और क्या देखा? प्राणायाम। और क्या देखा? वो सब तो प्रकृति में आ गया। रिवायरिंग क्या देखा? ब्रेन रिवायरिंग में दोहराव। कौन सी शक्ति है ये? दोहराव की शक्ति। किसी भी चीज को दोहराते जाओ, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे नया पैटर्न स्टैब्लिश हो जाता है, उसकी आदत डालनी है। शरीर को आदत डालनी है त्याग की, मन को आदत डालनी है त्याग की, हैबिचुअल बनाना है, और एक बार आदत हो गई फिर वो सहज हो जाता है। पहले दिन कोई सर्जन ऑपरेशन करता है, उसके हाथ कपते खून देखकर, पैर दुखने लगते, चक्कर आने लगते हैं, उसको बिठा के बीच में से उसके लिए नाश्ता लाना पड़ता है, उसको जूस पिलाना पड़ता है, कोई चक्कर खा के गिर भी जाता है लंबा समय ऐसे पकड़ के, क्योंकि जो असिस्टेंट होते हैं उनको खाली पकड़ने का काम होता है, ऑपरेशन तो सर्जन करता है, इधर से पकड़ के रखो, उधर से पकड़ के रखो, और वो खून देखते रहो, उसको करना कुछ नहीं है, खाली पकड़ना है, असिस्टेंट सिर घूमने लगता है ये ट्रेनिंग में, उसको इतना कुछ एंजॉयमेंट नहीं लगता है उसमें, और जब सीखता भी है तो बड़ा डर लगता है कहीं कुछ कट ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। पर जब वो मास्टर बन जाता है, आराम से आते हैं, गीत चाहिए ओटी में, उसके बाद ही ऑपरेट करते, फटाफट ऑपरेट कर लिया चले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, चौथा, पांचवा, फटाफट फटाफट, एक्सपर्ट, ब्लडलेस सर्जरी, कोई कोई सर्जन्स को कहा जाता है ये ब्लडलेस सर्जन है, इतने एक्सपर्ट है कि उनको पता है कहाँ नहीं काटना है, ऑपरेशन करते मिनिमम ब्लीडिंग, ऑपरेटिव साइट में ब्लीडिंग बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि नाइफ बराबर वहीं पे जाता है जहां जाना चाहिए उसको। तो ये सारी साधनाएं हैं। तो 3 दिन हमने साधना की पवित्र शरीर की, उसमें 8 बातें देखी, और जो तीसरी बात थी वो कौन सी थी? तीसरी बात कौन सी थी जिसका आज हम विस्तार करेंगे? फास्टिंग, उपवास। भोजन हमें शरीर से जोड़े रखता है। इसके लिए सभी साधनाओं में फास्टिंग का बड़ा महत्व दिया है। एक उदाहरण है, एक 1963 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें एक पायलट दाम्पत्ति, फ्लाइट क्रैश हो गया, वो दो ही थे हेलीकॉप्टर में, क्रैश हो गया और वो दोनों ऐसी जगह आ गिरे जहाँ पे कोई मनुष्य ही थे नहीं, कोई नहीं था। मार्च 63 में संसार के समाचार पत्रों में 7 सप्ताह तक बिना अन्न के जीवित रहने की एक रहस्यमयी कहानी प्रकाशित हुई थी। बहुतों को इस पर विश्वास नहीं होता था, किंतु घटना बिल्कुल सत्य थी। यह कहानी कैलिफोर्निया के पायलट दाम्पत्ति की थी जिन्हें वायुयान दुर्घटना के कारण उत्तरी ब्रिटिश कंबोडिया के पहाड़ों पर निर्जन स्थान में भोजन के प्रचंड शीत के प्रहारों को झेलते हुए 49 दिन जीवन यापन करना पड़ा। रैल्फ और हेलन, ये दो लोग, बाद में उनको वहां से निकाला गया, आग जलाकर भारी कपड़ों से शरीर को ढककर कठिन शीत से 49 दिनों तक वे लोग अपनी रक्षा करते रहे। दुर्घटना के पहले 4 दिनों में उन्होंने 4 टिन मछलियां, 2 टिन फल और कुछ बिस्किट खाए। दुर्घटना के 20वें दिन वो 2-2 ट्यूब टूथब्रश का अंतिम आहार उन्होंने किया, कुछ वो जो उनके पास था, बाद में तो कुछ मिला ही नहीं। सुबह दोपहर और शाम को विहार के रूप में पिघली बर्फ का ही सेवन करते रहे। अंतिम 6 सप्ताह तक वो केवल पानी पीकर ही जीते रहे। रुचि परिवर्तन के लिए ठंडा, गर्म और उबला हुआ बर्फ का पानी लेते। वो जो बहन थी वो बहुत मोटी थी पहले, किंतु इस कठिन परीक्षा के बाद शरीर का 40 पाउंड वजन घटा, देखकर उसे आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। और ये उपवास क्वाल में भी जो विवशतावश करना पड़ा वो बड़े सक्रिय और सशक्त रहे, उनके शरीर में भी कमी हो। जिन चिकित्सकों ने उन्हें उनका परीक्षण बाद में किया, उन्होंने देखा कि ये बहुत स्वस्थ और प्रसन्न है। ये अपने आप हुआ है, मजबूरी से हुआ। तो ये जो फास्टिंग है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर शुद्ध होता है, पर इसका लोगों ने इसे ठीक से समझा नहीं, जबरदस्ती किया है और शरीर को हिंसा पहुंचाई है। इसका लक्ष्य हिंसा पहुंचाना नहीं है, इसका लक्ष्य क्या है? शरीर से प्रेम बढ़ाना, शरीर को पवित्र करना, शुद्ध करना। इसके जैसा शुद्धि का और कोई मार्ग संसार में नहीं है, अगर इसको इसी रीति से किया जाए जिस रीति से इसे करना चाहिए। नहीं तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि हर 2-3 घंटे में व्यक्ति को भूख लगती रहती है और खाते रहता है, हर 2-2 घंटे में भूख लगती है और खाते रहता है, क्योंकि ये साधना कवि की ही नहीं, ये भी एक साधना है लंघन की, परम साधना है ये, तपस्वियों की ये साधना है। और ये करते करते आनंद की अनुभूति हो, ये करते करते हल्केपन की अनुभूति हो, वेटलेसनेस का अनुभव हो, फरिश्ते स्थिति का अनुभव हो, और शरीर पवित्र होते जाता है जितना, उतना मन में शक्ति आने लगती है, बीमारियों से अपने आप मुक्ति होने लगती है। और जैसे ही शरीर बीमारियों से मुक्त होता है क्या होता है? खुशी होती है। किसी को डायबिटीज़ चल रहा है 50 साल से और एक दिन उसका डायबिटीज़ 0 हो जाए, क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा उसका? हमेशा जिसको रोज उठते ही थकान सी अनुभूति होती है, एक दिन थकान ही नहीं, एकदम ऊर्जा, कैसी अनुभूति होगी उस व्यक्ति को? नींद ही नहीं आती है किसी को 10 साल से, 20 साल से, और एक दिन अचानक इतनी प्रगाढ़ निद्रा, इतनी गहरी नींद कि उठने के बाद इतनी ऊर्जा से भरा हुआ है, कैसी अनुभूति होगी? जीसस क्राइस्ट का दिखाया हुआ है, जिस अपने जीवन काल का अवतार का कार्य चालू करने से पहले 40 दिन 40 रात फास्टिंग, मोसेस 40 दिन 40 रात, ये अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में प्रेयर एंड फास्टिंग, सारे संत जितने होके गए रोमन कैथोलिक सेंट्स एकांत में चले जाते थे और प्रार्थना करते रहते थे दिन रात और भगवान से नज़दीकी बढ़ती जाती थी उस अवस्था में। तो ये जो फास्टिंग है इसके बारे में हम बीच बीच में देखते ही रहेंगे, पर आज हम देखेंगे इस फास्टिंग के सुपर ह्यूमन 15 लाभ। सबसे पहला उपवास का लाभ है सुपर ह्यूमन विल पावर। सबसे पहला लाभ सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन अर्थात अति मानव, मतलब ये जैसे मानवीय नहीं है, हायर पावर, सुपर पावर, विल पावर डेवलप। विल पावर अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे, इच्छा शक्ति। हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, आज ये करूं वो करूं, प्रार्थना ये तो संकल्प तो करते पर पूरा हो नहीं पाता क्योंकि विल पावर ही नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े संकल्प करते, आज ये करूंगा, 8 घंटे का योग का चार्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कहाँ हो पाता है, क्योंकि विल पावर की कमी है। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, जंगल के बंदरों ने सोचा ये क्या है, लोग हमारी कितनी ग्लानी करते हैं, मनुष्य समाज जहां देखो लोग क्या कहते हैं, गाली के लिए हमारे शब्द नाम का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि हम खाते ही रहते हैं तो क्यों ना हम उपवास करें। तो बंदरों की सभा में बंदरों के जो गुरु है वो कहते हैं हम एक दिन उपवास जरूर करेंगे, तो सभी बंदर फास्टिंग पर जाते हैं सुबह से रात तक। पर एक बंदर कहता है पर जब हम शाम को रात को उपवास तोड़ेंगे तब तो बहुत भूख लगेगी ना, तो पहले से अरेंजमेंट की जाए ना किससे उपवास तोड़ना है। वो कहते हैं यू आर राइट। छोटे छोटे बंदरों को भेजा जाता है केले मंगाने के लिए, ढेर सारे केले आ जाते, केले रख देते और फिर उपवास चालू। वो कहते हैं आज से हम पूरा दिन हम योग तपस्या करेंगे, ध्यान मगन अवस्था में सभी बंदर बैठ जाते हैं, कमर सीधी आंखें बंद चिन मुद्रा। एक छोटा बंदर कहता है अपनी मम्मी को केले तो पड़े हुए पर जब हम उपवास तोड़ेंगे तो कितनी भूख लगेगी, तो क्यों ना हम केला अपने हाथ में ही रखे। बंदरों के गुरु कहते हैं उधर क्या चल रही है खुशबूस। वो माँ कहती है ये ऐसा कह रहा है, तो वो सोचता है ही इज राइट, क्योंकि उपवास तो हमको तोड़ना है नहीं, उपवास तो शाम को ही टूटेगा। तो सभी बंदर अपने हाथ में एक एक केला रख देते परंतु केला खाएंगे नहीं क्योंकि उपवास है। फिर चिन्ह मुद्रा ध्यान ओमकार। छोटा वो छोटू बंदर फिर कहता है कि हमें भूख तो बहुत लगेगी ना, क्यों ना छील के खोल निकाल के रखेंगे, खाएंगे नहीं, इसमें क्या हर्ज है क्योंकि उपवास तो जारी है ना, खाएंगे थोड़ी टाइम की बचत होगी क्योंकि जब उपवास तोड़ेंगे तो कितनी भूख लगेगी, क्यों टाइम वेस्ट करें। वो कहता है राइट। सभी बंदर अपना केला छिलके निकाल के फिर से ध्यान योग मुद्रा ओमकार। छोटू बंदर कहता है क्यों ना ये जो केला है हम मुंह में रखेंगे, खाएंगे नहीं। तो मुंह में खाना नहीं है पर किसी को, तो सभी बंदर एग्री हो जाते हैं। तो मुंह में केला रखा जाता है और फिर ध्यान चालू और थोड़ी देर में अलग अलग आवाजें आने लगती है और उपवास पूरा हुआ। विल पावर नहीं है, बहुत विल पावर चाहिए, पर एक बार आदत पड़ गई दोहराओ बार बार किया तो वो सहज हो जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट फास्टिंग बाय इट्स मेरिनेट इज पुटिंग ऑफ द फिजिकल इन ऑर्डर टू टैप इनटू द हायर रियल्म ऑफ मीनिंग। हम शरीर को नीचे रख रहे हैं, हम धरती तत्व को नीचे रख रहे हैं, हम देहभान को नीचे रख रहे हैं, हम स्थूल को छोड़ रहे हैं, हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, ऊंचाइयों में जा रहे हैं, उस निराकारी जगत में प्रवेश कर रहे हैं। कल कहा था ना बाबा मैं कहाँ से आता हूँ, बहुत दूर से आता हूँ नौकरी करने बिना फीस के पढ़ाने आता हूँ, मैं बहुत दूर से आता हूँ। वो जो दूर की दुनिया है ना वहाँ शरीर नहीं है, वह अशरीरी दुनिया है, जब शरीर ही नहीं, तो शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं है, हमको उसी दुनिया का यहाँ अनुभव करना है, तो शरीर से संबंधित जो चीज़ें उन सब से दूर जाना पड़ेगा। और शरीर से संबंधित सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? भोजन, जो हमें शरीर से एकदम जोड़ देती है। डिस्ट्रक्टिव एडिक्शंस एंड अदर सैबोटेजिंग बिहेवियर्स आर द अपोजिट ऑफ विल पावर। विल पावर के खिलाफ क्या है? एडिक्शंस है, हमको आदतें, एडिक्शन हो गया है। भोजन हमारी सबसे बड़ी, सबसे बड़ा व्यसन है, सबसे बड़ा व्यसन। काम विकार तो द्वापर से आया, भोजन कहाँ से चालू हुआ? उससे भी पहले, त्रेत सतयुग से आए तब से चालू हो गया, उसकी गहरी आदत है उसकी। Every decision you make is important. If you justify pure decisions, poor decisions from time to, you are stunting the development of quality habit. If you can't control even yourself, what can you control? अगर अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने शरीर को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी जीवा को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इस संसार की कौन सी चीज़ कंट्रोल कर सकोगे, जिसका अपने जवान पर ही कंट्रोल नहीं है? बस दिन रात खाऊं खाऊं, किसको खाऊं, क्या खाऊं, दो दो घंटे में खाऊं, अभी ये खा लिया, अभी टोली खाऊं, अभी सैंडविच खाऊं, अभी ये खाऊं, अभी स्वीट, अभी नमकीन, बस खा ही रहे दिन भर, कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर यहीं पे ये कंट्रोल है, तो क्या ऐसी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी कहा जाएगा? देयर इज नथिंग मोर फंडामेंटल टू सर्वाइवल देन फूड। When you learn to control your own eating, you develop the ability to control less fundamental and less destructive. जब भोजन को वश में करना सीख जाती है आत्मा, तो बाकी जो भी व्यसन है उनको अपने आप कंट्रोल करने में बहुत सहज हो जाता है। जितने भी व्यसन है, चाहे टेक्नोलॉजी का व्यसन हो, चाहे काम विकार हो, लोग कहते हैं हमने काम विकार के लिए जितनी क्लासेस है ब्रह्मचर्य की सब सुन लिए, पर फिर भी हो नहीं रहा है, सब कुछ किया पर ये नहीं किया, इसका तो सहज परिणाम है वो। फास्टिंग इज द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड विल पावर वर्कआउट है ये, जैसे वो वर्कआउट करते हैं ना, ये फास्टिंग विल पावर का वर्कआउट है। यदि ये सीख लिया तो बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्रोध वश में आ जाएगा, सब कुछ वश में आ जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सबसे पहला फायदा विल पावर। उसमें यह भी कहा है कि जिन लोगों को एडिक्शन है, ये संसार के लिए जो निकोटीन, अल्कोहल, कैफीन, कैफीन अर्थात ये चाय और कॉफ़ी, छूटती नहीं है लोगों की, चाय और कॉफ़ी के हंटर लगते हैं जब, तब आत्मा में ताकत आती है, फिर योग में बैठते तो नींद नहीं आती, नहीं तो चाय चाहिए, बिना चाय और कॉफ़ी के हंटर के शक्ति नहीं आती है। जबकि दारू को इतना बदनाम कर रखा है, पर दारू से भी खतरनाक चाय और कॉफ़ी है, उसके सिवा कितना भयंकर एडिक्शन है, वो पियो उसके बाद में फिर नींद नहीं आती, और उसका असर थोड़ी देर चलता है, और वो नहीं मिलेगा तो बेचैनी होती है। दारू के बारे में ये कितना कुछ कह के रखा है, इनके लिए कुछ नहीं कहा है, कम कहा है, इसको मान्यता प्राप्त हो गई है, जबकि ये भयंकर एडिक्शन है। किसी लेखक ने लिखा है, वेयर एज गॉन मैन्स करेज एंड आई से इन द कप ऑफ टी, मनुष्य का धार्मिक साहस कहाँ चला गया, और मैं कहता हूं चाय के कप में डूब के मर चुका है, पिए जा रहे सुबह शाम दोपहर रात, क्यों पी रहे पता नहीं, कितनी बार पीनी चाहिए। सबसे पहले जो 10 बार पीती है 5 बार, वो जो 5 बार पीते हैं वो 4 बार, जो 4 बार पीते हैं 3 बार, जो 3 बार पीते 2 बार, जो 2 बार पीते वो 1 बार, जो 1 बार पीते उसको हमेशा के लिए तलाक, जो नहीं पीते वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, वो दूसरों को ये दिखाएंगे कि ये शरीर देखो कितना पवित्र है, इसमें मैं कोई भी जहर नहीं डाल रहा हूं। उत्तेजनाएं हैं कैफीन टैनिन्स, उन उत्तेजनाओं को अब तक नहीं छोड़ा है, शरीर को हंटर है वो, हंटर हंटर से चला रहे हैं शरीर को, मार मार के चला रहे, उसको बिठा रहे योग में इस हंटर को लगा के, जबकि वो प्योर पॉइजन है। जो व्यक्ति रोज दारू पीता, एक दिन दारू नहीं पीता, तो उसको क्या क्या होता है, क्योंकि वो एडिक्शन है, इसी का यही प्रमाण है कि वो नहीं पीने के बाद में थकान लगती है, सिरदर्द, मतलब कितना गहरा नशा है उसमें, यही तो प्रमाण है उसके नशीलेपन का। नहीं तो रोज फल खाता है जो व्यक्ति, एक दिन फल नहीं मिला, आम का सीजन आता है, हमने आम खाए 4 महीने, आम का सीजन चला गया, उसके बाद कोई मिस नहीं करता आम को, क्योंकि उसमें एडिक्शन ही नहीं है। पर रोज भोजन के बाद कोई रसगुल्ला खाता है, 4 महीना खाया और एक दिन नहीं मिला उसको, फिर रसगुल्ला ढूंढेगा कहाँ है, क्योंकि उसको मीठा चाहिए, भोजन खाया गुड़ चाहिए, भोजन खाया स्वीट चाहिए, भोजन खाने के बाद स्वीट खाने की आदत है, इसीलिए क्योंकि वो एडिक्शन है, क्योंकि जब वो नहीं खाता तब बेचैनी होती है। हमारा आहार है ना ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन नहीं खाया उस दिन कोई फर्क भी नहीं, वो चीज़ नहीं मिली चलेगा। जैसे नेचुरल आम है, आम में कोई एडिक्शन नहीं है, रोज खा रहे रोज खा रहे, कोई मिस करता है आम का सीजन जाने के बाद आम को? अंगूर रोज खा रहे, अंगूर के सीजन में अंगूर चले गए, कब चले गए पता भी नहीं चला, कुछ दूसरा आ गया, कोई ये सोचता है अरे मुझे अंगूर चाहिए अंगूर चाहिए, कभी नहीं। जो नेचुरल चीज़ें उसमें कोई भी, नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, इसमें कोई एडिक्शन नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। पर वो जो चीज़ अननेचुरल है, जो हमारा पराया आहार है, हमारा आहार ही नहीं है, वो जैसे ही हटता है हम बेचैनी होती है। हम ओपीडी में हमारे कितने पेशेंट्स आते हैं, सब दारू बीड़ी सिगरेट चरस गांजा ये सब सब एडिक्ट्स है, उनको भी पता है ये छोड़ना चाहिए, पर जब जब उन्होंने छोड़ने की कोशिश की शरीर में भयंकर रिएक्शन हुई। बीड़ी जब तक नहीं पीता तब तक पेट ही नहीं साफ होता, क्या करूँ बोलो, कोई भी दवाई दे दो, वो चाहिए क्योंकि वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड बन गई है। और कैसे कल भी कहा, लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट, शरीर ऐसा है कुछ भी जहर डालो वो एडजस्ट करते जाता है बेचारा, करते जाता है, मरता नहीं है वो, मोल्ड होते जाता है, ये उसका स्वभाव है, मरेगा नहीं वो, एकदम से नहीं मरता है। पॉल्यूटेड एटमॉस्फियर में लोग रहते मरते हैं क्या? नहीं मरते, धीरे धीरे स्लो पॉइजन है वो। तो फास्टिंग किया तो मेडिकली क्या होगा, मेडिकली फास्टिंग हैज बीन फाउंड टू रैपिडली डिसिपेट द क्रेविंग, क्रेविंग अर्थात तलब उठती है, ऐसा लगता है बेचैनी होती है, उस बेचैनी के सामने क्या वो बेचैनी स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है, खाऊं बिल्कुल अभी, आधी रात को 12 बजे उठ के ढूंढने जाता है व्यक्ति, डब्बे डुब्बे ढूंढो अंधेरे में कुछ भी, पर मिल जाए कुछ भी मिल जाए बस, ऐसी क्रेविंग होती है। तो ये जो निकोटीन अल्कोहल कैफीन अदर ड्रग्स, जब ये छूटेगा तो वो अपने आप छूटने का विल पावर जन्म लेगा शरीर मन में। कितनी बार संकल्प करते हैं, मार्क ट्वेन ने लिखा है टू गिव अप स्मोकिंग इज सो इजी, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स, स्मोकिंग छोड़ना इतना आसान है, इतना आसान है क्या बताऊं, मैंने इतनी बार किया है, सबसे आसान काम है ये स्मोकिंग को छोड़ना, मतलब अभी तक छूटा ही नहीं है, रोज किया रोज छोड़ा, रोज संकल्प करो फिर एक नई आदत बन गई है, संकल्प करना और उसको तोड़ना, व्रत लेना और फिर उसको तोड़ना, बाबा के सामने प्रतिज्ञा करना और तोड़ना, अब ये रूटीन बन गया है। पहले तो पहले ही अच्छे थे जो व्रत नहीं करते थे, कम से कम तोड़ते तो नहीं थे। तो सबसे पहला सुपर ह्यूमन विल पावर आएगा उपवास करते ही, और कल बताया कैसे करना क्या करना, बहुत सारी बातें हैं, 2 घंटे से चालू करो, जो आज तक जिन्होंने कभी नहीं किया है, ये जिनके लिए अननोन क्षेत्र है बिल्कुल, कभी उन्होंने ये जोखिम उठाई नहीं, सोचा है बाबा संगम युग में बाबा हमारी ऐसी पालना कर रहा है और बाबा की पालना से हम अपने आप को वंचित रखे, नो हटाओ सब कुछ चलो, कल्प कल्प वंचित जाएंगे, भगवान संगम युग पर आकर ऐसी ब्रह्मा भोजन से हमारी इतनी पालना कर रहा है, 3 बार भोजन 4 बार टोली और हम इसको मना करें, महापाप शांतम पापम, तिरस्कार क्यों कर, ये तिरस्कार नहीं है, तिरस्कार भोजन तो डिवाइन सेलिब्रेशन है, पर किसके लिए, जब कड़ी भूख हो तब भोजन अगर किया जाए, हमको तो भूख ही नहीं, हम जो कुछ खा रहे भोजन भूख के बिना खा रहे, रूटीन निभाने के लिए डाले जा रहे हैं उसमें, जो मिला डाल दिया, क्या बना चाय रोज पीते आज चाय के साथ वो है खा लो, ये साहस नहीं है कि उसको रोक सके ना, ये साहस कहां से आएगा, यही तो साहस है, सब कुछ दिख रहा है परंतु ना। जगदीश भाई को किसी ने पूछा था, भाई साहब आप कहते हो संयम चाहिए स्वराज्य अधिकारी, यहां तो इतनी सारी चीजें बनती है फिर कैसे होगा यहां पर, जगदीश भाई ने बोला तुमको किसने बोला खाने के लिए, तुम अपना वो जितना खाना है खाओ एंड जाओ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा। सेकंड सुपर ह्यूमन कॉन्फिडेंस, न्यूरोकेमिकली फास्टिंग इंक्रीजेस लेवल्स ऑफ कैटेकोलामाइंस सच एज डोपामिन विच इलिमिनेट यूर हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस वाइल रिड्यूसिंग यूर एंग्जाइटी। हमारे शरीर में एक डोपामिन नाम का केमिकल है, जब भी कुछ हम खाते हैं, जैसे कोई बीड़ी पीता है, वो बीड़ी का एडिक्शन नहीं है, वो बीड़ी पीते ही वो केमिकल यहाँ से निकलता है और वो केमिकल पूरे तन बदन में आहा सुखद अनुभव कराता है, वो एडिक्शन उस केमिकल का है। दारू पी, उस दारू का एडिक्शन नहीं है, दारू पीते ही वो केमिकल निकला, और वो शरीर में एकदम सुखदायी अनुभव हुआ। चाय पी, चाय का एडिक्शन नहीं है वास्तव में, वो केमिकल निकलता है वहां से, पर वो केमिकल दूसरी चीजों से भी निकलता है। मेडिटेशन में सबसे ज्यादा निकलता है, एक्सरसाइज में भी निकलता है, नींद में भी निकलता है। ये चीजें हम करें, हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। किसी को कहो ये नहीं खाओ तो मर जाएगा बेचारा, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, क्या खाए, घास फूस? इसलिए आए थे क्या यहां? ये तो मेन आकर्षण है यहां रहने का, सब्स्टिट्यूट। तो कैटेगरी विदाउट सेल्फ कंट्रोल यू कांट हैव कॉन्फिडेंस। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है हमेशा, वो विल पावर को खत्म कर देता है। तो क्या होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक आत्मविश्वास, नई शक्ति आ जाएगी कि हाँ अगर मैं ये न खाने की शक्ति मुझ में आ गई ना, तो विकार में न जाने की भी शक्ति आएगी। मन में जो वैसे वैसे संकल्प आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, वो भी रुक जाएंगे। कामुक संकल्प, कामुक कल्पनाएं, ये भी अपने आप वश में हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, सुपर ह्यूमन ब्रेन फंक्शनिंग। उस दिन भी कहा था ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी क्या है? जब हम ऊपर से कुछ डाल ही नहीं रहे शरीर में, तो शरीर करेगा क्या? सेल्फ क्लीनिंग, क्लीनिंग की प्रोसीजर। अब तक क्या कर रहा था? पचाएगा, डाइजेशन चालू है। अभी सुबह चाय डाल दी, ठीक है, नहीं सुबह जूस डाल दिया, फिर थोड़ी देर के बाद चाय डाल दी, फिर नाश्ता डाल दिया, फिर पानी डाल दिया। शरीर को टाइम ही नहीं है, वो किस में बिजी है? पेट पचाने में बिजी है, पचाने में बिजी है, पचाने में बिजी है। अगर हमने नहीं कुछ डाला, 6 घंटा कुछ भी नहीं डाला, अब वो क्या करेगा? उसको काम तो चाहिए ना, अब घर की सफाई चालू कर देगा वो। ऑटोफेजी, जो डेड सेल्स है उनको निकालना चालू करेगा, इसको कहते हैं ऑटोफेजी। जो वेस्ट है उसकी रिपेयर चालू कर देगा। यहाँ कहीं सूजन है, हमने कुछ ना खाया ना पिया, अब ये सूजन है, ये सूजन की हीलिंग चालू हो जाएगी अपने आप। इसके लिए कहा है लंघनम परम औषधम, इससे बड़ा कोई औषधि नहीं है। कोई कुत्ता होता है, चोट लगती है उसको, घाव, क्या करता है वो? खाना पीना छोड़ देता है, चुपचाप बैठा रहता है, रेस्ट स्लीप, अपने आप घाव भरना चालू होता है। क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम नहीं होने देता है। इसके लिए फास्टिंग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने का काम है फास्टिंग का। कोई भी सूजन, गले में खराश हो गई तो ये सूजन है, डोंट पुट एनीथिंग, अपने आप हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सुपर ह्यूमन ब्रेन फंक्शनिंग डाउन रेगुलेट्स वेस्ट प्रोसेसेस एंड रिपेयर देमसेल्फ। तो क्या होगा, सबसे पहला ब्रेन एकदम तेज गति से काम करना चालू करेगा, और ये ब्रेन में फास्टिंग इंक्रीजेस लेवल ऑफ BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर, एक प्रोटीन है। इसका संबंध किससे जोड़ा गया है? जब इसके लो लेवल होते हैं तो हम अल्जाइमर्स के शिकार होते हैं। अल्जाइमर्स अर्थात जो बूढ़े लोग होते हैं ना, मेमोरी कम हो जाती है, याद नहीं रहता है कब का क्या हुआ, अभी किससे मिले याद नहीं कौन है, भूलती जाती, अभी चाबी कहाँ रखी, ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा, एकदम मेमोरी लॉस हो गया। और कोई कोई लोगों को यंग एज में हो जाता है ये। एक होता है अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स बुढ़ापे में आती है बीमारी, जिसमें ब्रेन में ये जो पेप्टाइड है ये कम हो जाता है, और फास्टिंग से ये पेप्टाइड बढ़ जाता है। इसके लिए जो लोग लंबा समय, जिनको फास्टिंग का अभ्यास है हर दिन, वो बुढ़ापे में भी उनकी बड़ी शार्प मेमोरी रहती है, भूलते नहीं है चीज़ों को। उसके बाद में लो लेवल जब BDNF का रहता है तो डिप्रेशन होता है। ये जो एंटी डिप्रेशन की गोलियां होती है ना, उसमें क्या होता है, यही सब होता है जो वो लेवल को बढ़ाता है। फास्टिंग से भी ये लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगला, स्ट्रोक, लकवा। अभी अभी ठीक था, अभी अभी लकवा। जैसे कल ही हमारे पास एक पेशेंट आया, 41 एज है, आया, चारों दोनों हाथ गए, दोनों पैर गए, क्वाड्रीपैरेसिस, और क्रॉनिक अल्कोहलिक है, 40 साल का है, दारू पी रहा है 20 साल से, हर दिन नियमित ईमानदारी से, रेगुलर रिलीजियसली MRI कराया, कल CT स्कैन कराया, ब्रेन सिकुड़ गया है। इतनी कम उम्र में ब्रेन सिकुड़ गया, जो सिकुड़ता है 70-80 साल में, वो जल्दी सिकुड़ गया। फ्रेश एयर नहीं है, टॉक्सिन्स शरीर में डाल रहे हैं, चाय जा रही है शरीर में, कॉफ़ी जा रही है शरीर में, कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, सब जहर डाल रहे, शरीर फिर भी एडजस्ट करके चला रहा है, पर एक दिन ऐसा टूट जाता है, अब ना हाथ हिला सकता है ना पाँव, नाक में लाली, पेशाब, लैटरिन पता नहीं चलता है कब हो रहा है, कंट्रोल ही चला गया बॉवेल ब्लैडर का। ऐसा कितने लोग होता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कहते हैं। फास्टिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कैंसर। अचानक हम तो ना तो बाहर का खाते हैं, ना तो हम ये चाय लेते हैं ना बेकरी लेते हैं, फिर भी एक दिन पता चलता है कैंसर। हमने कभी दारू तंबाकू कुछ नहीं खाया, कितने यज्ञ निवासी, अचानक कैंसर कहां से आ गया। फास्टिंग इंक्रीजेस योर लॉन्जिविटी एंड लाइफ स्पैन, दीर्घायु बनाता है, क्योंकि ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम अकाल मृत्यु हो जाए। सतयुग में अकाल मृत्यु क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर इतना पवित्र है कि अकाल मृत्यु का संबंध ही यही नहीं है। क्या खा रहे? प्योर फ्रूट्स खा भी नहीं रहे, पी रहे, और वो भी रोज नहीं, उनको जरूरत नहीं है, वो तो प्लेजर के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए। और हम जो कर रहे हैं वो इमोशनल ईटिंग है हमारा। फास्टिंग एनहांसेस लर्निंग एंड मेमोरी, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, शार्प मेमोरी हो जाती है, एक बार पढ़ा बस छप गया यहाँ पर, नहीं तो 10 बार पढ़ते रहो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, क्या याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहता है। फास्टिंग इंक्रीजेस एबिलिटी टू फोकस, एंड ये एक ही पॉइंट है, सेकंड थर्ड वाला चालू है पूरा, ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़ जाता है। हाँ, ये सारा ही उसमें जितना कुछ बताया, ब्रेन का फंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन रिड्यूस करता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन जो होता है ब्रेन का वो कम कर देता है। 24 आवर्स फास्ट वॉज न्यूरो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ट्रामा टू द ब्रेन लाइक कंकशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ये हो गया तीसरा, चौथा फायदा, सुपर ह्यूमन क्लैरिटी एंड डायरेक्शन। जब हम फास्टिंग रेगुलर करते हैं तो क्या होता है, स्पष्टता रहती है विचार करने की, प्लानिंग करने की, जो स्पष्टता है, बहुत माइंड क्लियर रहता है, हेजी नहीं रहता है, ये भी विचार वो भी विचार इधर विचार उधर विचार, ये जो क्लैरिटी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से छूट चुके हैं जब ये करते हैं, तब क्लैरिटी बढ़ जाती है हमारी, क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता। पांचवा, सुपर ह्यूमन हेल्थ, सुपर ह्यूमन हेल्थ मतलब हमारा ब्रेन हमको धोखा देता है, हर 2-2, 3-3 घंटे में कहता है जाओ जाके कुछ खाओ, जा जाके देखो क्या बना है वहाँ, भूखे हम हैं नहीं वास्तव में, वो इमोशनल ईटिंग है, इमोशंस में डिस्टर्बेंस होता है इसलिए हम खाते हैं। भूख के वजह से थोड़ी खाते, कोई नहीं खाता भूख के वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं सच्ची भूख क्या है, कड़ी भूख क्या है, क्योंकि हमें उसको टाइम ही नहीं दिया है। अभी अभी नाश्ता किया, अभी अभी दोपहर का भोजन आ गया, 8 बजे तो नाश्ता नहीं किया, अभी 5 घंटे नहीं गुजरे कि लंच, अभी 4-5 घंटे गुजरे नहीं कि डिनर, टाइम ही नहीं दे रहे उसको, हमें पता ही नहीं कि भूख क्या होती है, भूख का तो अनुभव ही नहीं है। भूख का अनुभव वो किसान को जाके पूछो, सुबह थोड़ा खा लेता है, दिन भर काम करता है, फिर 2-3 बजे खाता है सीधा, और कड़ी मेहनत के बाद पसीना है, और उसमें उसको कितना मज़ा आता है, और स्वस्थ रहता है, कभी उसको कोई बीमारी नहीं होती है, उसको तो पता भी नहीं होगा संसार में क्या कोविड चल रहा है, क्या चल रहा है, वो अपने दुनिया में मस्त है। और कितनी कम चीज़ें होती है, फूड जो है वो इन्फॉर्मेशन है, फूड क्या है, सूचना है, 10 चीज़ें डाल दी, वो इतनी सारा कॉम्बिनेशन है, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, पूरी थाली में जगह ही नहीं है कहीं, फिर भी इधर से डालो उधर से डालो, और वो सारा इन्फॉर्मेशन पेट के अंदर जाता है, पेट को समझ नहीं आता क्या करूँ, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसका डाइजेशन वहाँ होता है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ क्या करना है, उसको कन्फ्यूज़ हो जाता है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नो कॉम्बिनेशन, एक ही चीज़, एक फल एक समय, बस एकाहारी। सुपर ह्यूमन हेल्थ, तो हमको क्या हो गया है, ट्रू नेचर ऑफ हंगर तो हमें पता ही नहीं, कड़ी भूख का पता ही नहीं क्या है, बस गए खाओ खाओ और खाओ, खाते ही रहो। आइडियली बॉडी को एक बार खाने के बाद 12 से 24 घंटे भूख नहीं लगती है वास्तव में, हम जो खाते हैं वो इमोशंस, इमोशनल ईटिंग है हमारा। फिर फास्टिंग से रिवर्स हो जाते हैं बिंच डिसऑर्डर, बिंच डिसऑर्डर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, ये 2 डिसऑर्डर से खाने के, जिसमें व्यक्ति खाते रहता है, उल्टी करता है फिर खाता है, मुंह में हाथ डाल के खाएगा फिर उल्टी करेगा फिर दूसरा आइटम फिर उल्टी करेगा, क्योंकि खाने में ही इंटरेस्ट है, सबका टेस्ट लेना है। एक राजा था, उसने तो एक फिजिशियन रखा था, कौन, एक विदेश का एक राजा था, When Rome was burning, क्या नाम था उसका, उसने एक फिजिशियन रखा था, वो खाना खाता था, वो फिजिशियन उसको उल्टी कराता था फिर पर्सनल, और फिर खाता था, बस यही काम चलता था। तो फास्टिंग से ये रिवर्स हो जाएंगे डिसऑर्डर्स, उसके बाद में ये चेहरों पर ये मुहासे ये क्या क्या होते रहता है ना, ये सब क्या है, ये सब टॉक्सिन से जो यहाँ जमा हो गए वो सब ख़त्म, उसके बाद में पूरा सिस्टम रिब्यूट हो जाएगा, जैसा कंप्यूटर का क्या करते फॉर्मेट करते हैं ना, फॉर्मेट करने के बाद जो कुछ है सब हट जाता है, 24 घंटे का एक ड्राई फास्ट, ना खाना ना पीना, 24 आवर्स पूरे सिस्टम को रिब्यूट कर देता है, रिबूट फॉर्मेट कर देता है, फिर नए सेल्स जनरेट होते हैं, नई आदतें निर्माण की जा सकती है धीरे धीरे। हाँ, पर वो सीख, बॉडी सिखाती है बहुत सारी चीज़ें। फास्टिंग इंप्रूव्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मलाइज होने लगता है, डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल में आने लगता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो सब अपने आप कंट्रोल, ब्लड इंसुलिन लेवल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, ग्रोथ हार्मोन्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हेल्थ, हेल्थ क्या, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, सभी सुपर हेल्थ के लिए फास्टिंग मस्ट है। उसके बाद में अगला, सुपर ह्यूमन मोटर स्किल्स एंड प्रिसीजन। ये मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ये लेखक अपना 93 ईयर ओल्ड के ग्रैंड फादर है उसका उदाहरण दे रहा है। उनको आदत है हफ्ते में एक दिन 24 घंटा उपवास करने की, ड्राई फास्ट करने की। तो वो जो पिताजी है उनके, वो उसके बारे में कहता है कि इस उम्र में भी वो अभी भी लॉन में घूमते हैं, सुबह उठते हैं 4:30 बजे, 2.5 घंटा पढ़ते हैं, और उनका पहला भोजन होता है 7 बजे और सीधा दूसरा 2 बजे। मतलब ये अपना लिख रहा है कि कितने एक्यूरेट है वो अभी भी, छोटे छोटे काम वो खुद करते हैं। मोटर स्किल्स अर्थात जैसे ये बटन लगाना, पहनना, कुछ बुनना, ये जो फाइन स्किल्स है ना, जैसे पेंटिंग करना, एकदम फाइन आर्ट्स, इतनी उम्र में भी ये सारे स्किल्स प्रिजर्व्ड रहते हैं फास्टिंग से। अगला, सुपर ह्यूमन स्लीप। अभी हमारी जो स्लीप की क्वालिटी है बहुत ही स्लीप पुअर है, उसका गहरा कनेक्शन हमारे भोजन से है। और रिसर्च ने यह पता किया है कि 16 घंटे का जो रेगुलर फास्ट करते हैं हर दिन, उनकी पूरी स्लीप साइकिल ही रिसेट हो जाती है। एवरीडे 16 आवर फास्टिंग, जैसे कहा कि 2 घंटे से चालू करो, 4 घंटे तक पहुंचो। जैसे अभी नाश्ता कर लिया, अभी 12 बजे तक कुछ नहीं खाना। जिन्होंने कभी किया नहीं उनके लिए, एकदम जो नव सीखिया है फास्टिंग की दुनिया में, जो नए नए खिलाड़ी है उनके लिए, जिन्होंने कभी कुछ पता ही नहीं, जिनके लिए ये पाप लगता है, जैसे ये बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं तुमने कहां से लाया। बाबा कहते खाओ पियो मौज करो, बाबा का घर है, पालना हो रही है रूहानी, बाप टीचर सदगुरु के द्वारा, और बीमार पड़े जा रहे। जिसने अपने शरीर को चलाना नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाएंगे, बाबा के महावाक्य है। शरीर को चलाना, बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। तो 16 घंटा तक पहुंचना, ये टारगेट रखना है इस 84 दिन की भट्टी का, कि हमारा 16 घंटे उपवास, निर्जल उपवास, न खाना न पीने वाला उपवास, नेचुरल हो जाए शरीर के लिए, सहज हो जाए, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़े। जैसे पहला भोजन ही 12 बजे, इसका अभ्यास करना है धीरे धीरे। जो नहीं कर सकते, जैसे कहा ना, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 12 घंटे तक आओ, 12 घंटे को अब रखो, 1 महीना 12 घंटे तक ही रखो। ग्रिप जब तक नहीं आती आगे नहीं बढ़ना, दूसरों को देख कर आगे बढ़ेंगे ना तो चरे तो चाखे वैकुंठ रस, नहीं तो चकनाचूर, नहीं तो वो बंदरों जैसी हालत हो जाएगी। हमें पता है, हमने भी एक बार किया था ऐसा, जब कुछ पता नहीं था, ज्ञान ही नहीं था फास्टिंग का, शांतिवन में एक दिन 2003 जब हम नए नए आए थे, सीधा मुरली चली थी स्वराज्य अधिकारी की, ऐसा नशा चढ़ गया स्वराज्य अधिकारी बन के रहूँगा। 21 दिन का उपवास किया था, नींबू पानी और शहद, 21 दिन चला। 21वां दिन था, हॉस्पिटल का वो था, कुछ सेलिब्रेशन था पीस पार्क में, तो गए, इतना कुछ बना हुआ था, हमने कहा छोड़ो स्वराज्य अधिकारी को, अब हटाओ स्वराज्य अधिकारी, बहुत हो गया, इसको कैसे छोड़े। फिर वो सब याद आ गया, बाबा क्या क्या कितनी महिमा गाते ब्रह्मा भोजन की। फिर उसको सारा थाली भरकर ले लिया, भोग लगाया बड़ी खुशी से, और ये गया। माइंड बड़ा धोखेबाज है, इसकी बातों में नहीं आना। तो सुपर ह्यूमन स्लीप, तो क्या करना है, 16 घंटा तक लेके जाना है। जैसे रात को भोजन कर लिया, उसके बाद सीधा 12 घंटे के बाद ही खाना या पीना। फिर धीरे धीरे इस पे ग्रिप आ गई तो फिर 14 घंटा, फिर उस पे ग्रिप आ गई 16 घंटा तक पहुंचना है। मतलब 16 घंटा अर्थात 8 घंटा खाने का पीरियड है, विंडो, 12 बजे से 8 बजे तक रात तक, इसमें जितना खाना है खा लो, पर इसको धीरे धीरे तक पहुंचना है, यहाँ तक, एकदम नहीं जाना। एकदम कुछ करने जाओ तो बॉडी रिएक्ट करेगी, मना करेगी बॉडी, बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ, और सीधा जाके उतना खाएगी जो कभी आज तक नहीं खाया था, और वो सब खा लेगी जो आज तक नहीं खाया था। अपने आप को रैशनलाइजेशन करेगी, जस्टिफिकेशन भी देगी कि बाबा ने तो कहा है ना कि ब्रेड बटर वो सब भी खा सकते हैं जब कुछ ना हो तो, ऐसा सब कुछ सारे ज्ञान योग के पॉइंट निकले, अपने आप को कन्विंस करके हम शांति से योग में शाम के बैठ जाएंगे कि सब ठीक चल रहा है, और इधर ऊपर से नीचे गिर चुके हो। तो धीरे 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 16 घंटा तक पहुंचना है। 16 घंटा था, 12 से 8 ये विंडो ले सकते हैं 8 घंटे की या दूसरी कोई विंडो, कोई भी विंडो, कोई रात पर 16 घंटा होना चाहिए। एवरी डे निर्जल, न खाना न पीना, बंद द्वार, रात से 8 से सुबह 8 ये हो गया 12, उसको 4 घंटा एक्सटेंड कर दो 12, तो 12 घंटे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, उसके बाद ही कुछ लेना, प्रेफरेबली जूस, और फिर दिन भर खाओ जो खाना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्या करना है। तो 12 से फिर 16 से 18 में आओ, 18 से 20 में आओ, 20 में 22 में आओ, 20 23 में आओ, फिर OMAD 1 meal a day, एक बार खा लिया बस, अब जरूरत ही नहीं, शरीर मांग भी नहीं करता है। रोज सूरज को देखते रहो, सूरज से किरने लेते रहो, रोज ज्ञान योग, सूर्यमुखी, संडे की मुरली, ईस्टर्न ग्रुप से मुलाकात, सूर्यमुखी अर्थात सूरज के समान सामने रहता है वो, सारी सकाश में खिला हुआ, भगवान से ही किरणें मिल रही है, प्राण ऊर्जा मुझे मिल रही है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी इतनी ज़्यादा है क्या खाऊं, रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया हमने भोजन का। माताएं सारे विश्व भर की जितनी माता है सभी का काम कम हो जाएगा, क्योंकि सबको हमने गुलाम बना के रख दिया, जैसे किचन में देखते रहो बस, भारतीय संस्कृति ने, यही तुम्हारा काम है, वो सब मुक्त हो जाएंगे और उनकी ऊर्जा कहीं दूसरे क्रिएटिव कार्यों में लग जाएगी, दुआएं भी देगी बहुत, बोझ मुक्त हो जाएंगे। ये तो एक दूसरा ही टॉपिक है, इस पे भी चर्चा करेंगे कभी, सब कुछ बजट होगा उसके, सारा हमारा जीवन ही तो भोजन के इर्द गिर्द घूम रहा है, भोजन का पैसे कमाना, उसको पकाना, उसको लाना, उसको छानना, सब 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 ये सब से छूट जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर मांग ही नहीं कर रहा है, सामने रखा हुआ है पर हम मांग नहीं, और हम एकदम स्वस्थ है, एकदम अच्छे हैं, खेलते कूदते सारी सेवाएं कर रहे हैं, टाइम मिल जाएगा इतना ज़्यादा, टाइम इतना ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि काम कितने बड़े बड़े करने हैं, आधा काम तो हमारा समय तो उसी में जा रहा है, टाइम पूरा हो रहा है इधर भी तो कितने हो गए टोटल 7, 15 है, बाकियों की चर्चा कर करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पहला बताया सुपर ह्यूमन विल पावर आ जाएगी, थोड़ा सा भी उपवास कर लो, सुपर ह्यूमन विल पावर डेवलप हो जाएगी। अब मुरलियों में आता है कि उपवास करने से भगवान, वो भगवान मिलने वो न मिलने की बात नहीं चल रही है, यहाँ हायर डायमेंशन, और एक चीज़ ज्ञान जो है वो डेवलप हो रहा है, ये नहीं सोचो कि भगवान ने तब जो कहा उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें कहा, इवॉल्विंग है सब कुछ, अपडेट हो रहा है हर चीज़, तो इसके लिए हमको समय के साथ अपडेट होना चाहिए, ये नहीं कि बाबा वो 1960s में वो लोग जो करते थे वो अब किया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, समय बदल चुका है, सब कुछ बदल रहा है, तो हमें भी अपने आप को, अपनी आदतों को, उस समय यज्ञ में क्या था, बाबा ने वो सारी बातें उस समय के लिए कही है, हाँ वो शुद्ध था सब कुछ, उस समय वो लागू होता है वो सब, पर अभी नहीं, अब सब कुछ बदल गया है, अब जाके देखो क्या क्या हो रहा है संसार में, तो हमारा नॉलेज भी अपडेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने पिछली कोई बात को बाबा की पकड़ के रखी और अभी उसको लगाते बैठ रहे, नहीं, वो ज्ञान अपडेट हो रहा है, हर चीज़ अपडेट हो रही है, बाबा की जो 1960s 80s की मुरली है वो 60s की मुरली है जैसी नहीं है, साकार मुरली अलग है, अव्यक्त अलग है, अव्यक्त में कुछ और बातें कही है, हायर बातें कही है, कि कौन सी अव्यक्त मुरली है जिसमें कहा जाके एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, नहीं वो 60s में लागू था, उसके बाद में तो मेगा सेवाएं होगी, बड़ी सेवाएं हो गई, अभी तो उससे भी ज़्यादा हो गई, अभी वो सब चीज़ें कोई काम की नहीं है, वो आउटडेटेड हो गया है, ज्ञान अपडेट हो रहा है, ये हम भूल रहे हैं, और पुरानी संस्कृति को, पुरानी सभ्यता, पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए हैं कि बस यही करना है हमको, क्योंकि बाबा ने कहा, अरे बाबा ने उसके आगे 10 और चीज़ें कही है, वो तुम भूल गए हो, ज्ञान इज गेटिंग अपडेटेड, ज्ञान इज इवॉल्विंग, हर चीज़ हर दिन इवॉल्व हो रहा है, अगर अभी भगवान आ जाए और अव्यक्त मुरली अभी चले ना, वो एकदम नई अव्यक्त मुरली होगी, क्योंकि पोस्ट कोविड युग में हम जी रहे, वो वाली अव्यक्त नहीं मुरली होगी कि जाओ ये करो वो करो ऐसी सेवा करो, वैसी सेवा बहुत ज़्यादा हो गई है, बाबा अभी कहेंगे सेवा बंद करो, शांति से योग में बैठो, ये मुरली होगी अभी अलग अलग ओम शांति। बाकी चीजें तो क्या क्या देखे थे, एक तो विल पावर बढ़ जाएगी, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तीसरा ब्रेन फंक्शनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसके बाद मोटर स्किल्स बढ़ जाएगी, उसके बाद स्लीप, हमारी नींद गहरी प्रगाढ़ और बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पूरा सिस्टम को ही फॉर्मेट कर रहे हैं, सारे वायरसेस खत्म। ओम शांति।